તારીખ 6/2/1996 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 147 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું કલકત્તામાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 42
પત્રાંક 147 સુગ્નભાઈ ખીમજી આજ્ઞા પ્રત્યે અનુગ્રહ દર્શાવનારો સંતોષપ્રદ પત્ર મળ્યો. ખીમજીભાઈને ચિઠ્ઠી લિખા હોગા, ઉસમે એસા લિખા હોગા કે આપ હમારે પર અનુગ્રહ કીજીએ. અનુગ્રહ માને કૃપા. किस प्रकार का अनुग्रह कीजिए कि हमको कुछ आज्ञा दीजिए. कुछ आज्ञा करके हमारे पर आप कृपा करो, ऐसा कोई चिट्ठी में बात होगी. तो उससे कृपालु देव को संतोष हुआ है कि चलो ये जीव का स्वच्छंद छूटेगा. मनुष्य की भूमिका में कदम कदम पे ऐसे चित्र विचित्र परिणाम होते हैं कि भूल हो जाती है और परिणाम में जो आगे बढ़ना होता है वो नहीं हो पाता है. और इसलिए उलझन भी होती है कि हमारे परिणाम में हम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं. समय तो निकलता जाता है और उतने समय निकलने पर भी हमारे परिणाम जो है उसमें जो रिजल्ट आना चाहिए वो फल नहीं आ रहा है, ऐसा लगता है. कारण यह होता है कि कहाँ कितना दोष होता है वो खुद को नजर नहीं आता. और इसलिए उसने मिटाने के लिए भी उनको कोई प्रयास नहीं चलता. इसलिए हमको जो कुछ करना है वो ज्ञानी से ज्ञानी की आज्ञा लेकर करना है. इस तरह से एक निर्णय निर्धार होता है तो परिणाम में बहुत फर्क पड़ता है. संसार में भटकने के दो ही मुख्य कारण हैं, एक स्वच्छंद और एक प्रतिबंध. ज्ञानी की आज्ञा में रहने से दोनों मिटते हैं और यही इसका सुगम और सर्वश्रेष्ठ उपाय है. तो उन्होंने ऐसा ही आज्ञा लेने का उनके लिए कृपा का बात लिखा है. उस पर कृपालु देव ने दो पंक्ति में उत्तर दिया है सिर्फ, लेकिन बात बहुत से उसमें भरी हुई है. कि आज्ञा में ही एकतान हुए बिना परमार्थ के मार्ग की प्राप्ति बहुत ही असुलभ है. आज्ञा मिलने से कोई काम नहीं हो जाता. ज्ञानी नहीं कबूले आप ऐसे ऐसे करो, लेकिन इससे कोई काम नहीं होता. उसमें एकतान होने का होता है तभी मार्ग की प्राप्ति सुलभ होती है. एकतान होना मैंने क्या हिंदी में भी एक तान शब्द ही रखा है ना, ये तान नहीं चढ़ता है, धुन करती है। एक ही काम के पीछे लगे रहे, तो बोलते भी उसको इस बात का तान चढ़ गया है या धुन चढ़ गई है, वो कुछ आगे पीछे देखेगा नहीं, वही करता रहेगा। ऐसे आज्ञा के पीछे भी एकतान होने में मार्ग की प्राप्ति सुलभ है, और ऐसी परिस्थिति हुए बिना मार्ग की प्राप्ति असुलभ है नहीं, बहुत ही असुलभ है, ऐसी बात है। तो ये तो एक ऐसी बात हो गई कि मुमुक्षु अपने परिणामों को मिलान करें, कि हमको ऐसे परिणाम वर्तते हैं या नहीं वर्तते हैं। वर्तते हैं उनको तो कोई दूसरा विचार ही नहीं है, वो तो अपनी धुन में एक तान में ऐसा होता है कि दूसरा उसको कुछ विकल्प ही नहीं आएगा, न शंका होगी न संदेह होगा न और कोई विकल्प आएगा। और जिसको नहीं है वो दशा वो स्थिति जिसको नहीं है, उनको उस स्थिति में आने की अभिलाषा या भावना रखनी चाहिए, उतने सी बात है। एकतान होना भी बहुत ही असुलभ है। अब दूसरी पंक्ति में क्या लिख दिया है, दूसरे वचन में, कि एकतान होना वो बहुत लाभ का कारण है, यानी मोक्ष मार्ग की प्राप्ति सुलभता से प्राप्त हो जाती है, लेकिन एकतान होना वो सुलभ नहीं है, वो भी बहुत ही असुलभ है। क्यों? कि ज्ञानी के परिचय में भी सैकड़ों लोग आते हैं, लेकिन आज्ञा में एकतान होने वाले कुछ एक निकलते हैं, सब हो नहीं मान जाते हैं। और ये एकतान होना असुलभ, बहुत ही असुलभ है, ऐसा इसलिए बताया कि एकतान होने में सभी प्रकार के स्वच्छंद मिटाना होता है और प्रतिबंध भी छूटना होता है, प्रतिबंध से भी छूटना होता है, तभी आज्ञा में एकतान हुआ जाता है। तो उसमें ताकत लगती है, उसमें बहुत परिश्रम किसी को लगता है, प्रतिबंध छोड़ा नहीं जाता और स्वच्छंद भी हो जाता है, कुछ सोचे करे इसके पहले हो जाता है, इनके परिणाम आगे बढ़ जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में बहुत परिश्रम करना पड़ता है, यानी बहुत स्ट्रगल होती है, अंदर में भावों की लड़ाई होती है, अंदर में फ्रिक्शन होता है, कभी बाहर में भी फ्रिक्शन होता है, क्योंकि प्रतिबंध तो दूसरों का है, समाज का प्रतिबंध है, कुटुंब का प्रतिबंध है, शरीर का प्रतिबंध है, तो कभी बाहर में फ्रिक्शन होता है, अंदर में भी भावों का फ्रिक्शन होता है, दो तरह के भाव चल जाते हैं, इस तरह के भी चलते हैं, इस तरह के भी चलते हैं। ऐसी परिस्थिति में ये पुरुषार्थ करने वाले की परीक्षा हो जाती है, यानी काफी परिश्रम करने के बाद वो उत्तीर्ण होता है।
प्रतिबंध तो निज के भावों का रहता है, फिर बाहर में क्यों आता है?
बाहर में ऐसा है कि जैसे कुटुंब प्रतिबंध है, तो कुटुंब प्रतिबंध अगर छोड़ने का प्रयास करेगा तो कुटुंब प्रति के जो परिणाम है उसमें फर्क आएगा और कुटुंब वालों को उसको पता चलेगा। जिसका भी प्रतिबंध हो उसको तो पता चलेगा कि मेरी ओर से क्यों मोह मोड़ रहा है, क्या हो गया उसको, वो नहीं चाहेगा। ये कोई चाहेगा तो नहीं, क्योंकि संसार में भी कुटुंब में अरस परस तो राग होता ही है, वो कोई चाहेगा नहीं तो उसका ऑपोजिशन भी आएगा, विरोध भी होगा। फिर तो अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग प्रकार के उदय होते हैं, अलग अलग व्यक्ति के अरस परस की प्रकृतियां भी अलग अलग होती हैं। मुमुक्षु की जो योग्यता है उसमें भी विविधता है, ये सब होता है और उसमें से आगे बढ़ना वो कठिन भी लगता है। इसलिए कहते हैं कि असुलभ है, बहुत ही असुलभ है, थोड़ा असुलभ नहीं है, बहुत ही असुलभ है, प्राय ऐसा है। लेकिन एकांत ऐसा नहीं है, कुछ एक जीव ऐसे भी होते हैं कि जो उसका काम करने की पद्धति ऐसी है कि पूरा का पूरा वो झंपलाता है, वो धीरे धीरे आगे नहीं बढ़ता है, वो छलांग मारता है। जैसे सिंह वाघ होता है अपने शिकार पर, वो धीरे धीरे नहीं जाता, बिल्ली की तरह, बिल्ली चूहे के पास धीरे धीरे जाएगी, ये तो छलांग मारेगा 25-50 फुट का, एक फुट का मार के पकड़ेगा अपने शिकार को। ऐसे कोई ऐसे भी जीव होते हैं कि अच्छा आज्ञा में एकतान होने से मोक्ष मार्ग मिल जाता है, अब दुनिया की कोई परवाह नहीं है, कोई ऐसा छलांग मारता है, छलांग मारने वाला भी होता है। तो उतना जोर से वो एकतान होता है तो उसको कोई परिश्रम ही नहीं लगता है, कोई स्ट्रगल करना नहीं पड़ता, कोई फ्रिक्शन नहीं, कोई बात नहीं, तो उसका काम यूं हो जाता है। ऐसे दो प्रकार के मुमुक्षु में भी योग्यता वाले जीव होते हैं, प्रायः ऐसे होते हैं। इसलिए लिखा है कि बहुत से लोग तो कमजोर ही होते हैं, वो कमजोर होते हैं, उनको जो कठिनाई है वो वास्तव में अपनी कमजोरी के कारण से है। प्रतिबंध भी अपने परिणाम है ना, वो भी कमजोरी है और क्या है। और उसी कमजोरी के सामने जो तेजी से पुरुषार्थ उठना चाहिए वो नहीं उठता है, तो फ्रिक्शन होता है और कठिन लगता है ये काम, असुलभ लगता है, बहुत असुलभ लगता है। लेकिन एकांत ऐसा नहीं है, यानी सर्वथा ऐसा नहीं है, ऐसे भी जीव होता है। तो जिसको पता चल गया कि मुझे इतना लाभ होने वाला है, तो विश्व में इसके बराबरी में किसी का मूल्य है ही नहीं, मूल्यांकन किसी का है ही नहीं, कोई चीज़ का मूल्यांकन नहीं है। अरे कोई चीज़ ऐसी है नहीं कि जिसका मूल्य करने में उसको उसकी टर्म लगा सके, कोई टर्मिनोलॉजी नहीं।
इसमें सबसे बड़ा फूल या प्रचंड जीव इस प्रकार से करता है, जो आजकल प्राय देखने में भी आता है कि जैसे ना अगर मैं मेरी शक्ति से बढ़ करके अभी प्रतिबंध को तोड़ने का प्रयास करूंगा तो मेरे परिणाम गिरेंगे।
ऐसे परिणाम तो गिरे हुए हैं, परिणाम तो गिरे हुए ही हैं, अब तो पुरुषार्थ जैसे कैसे भी करना है।
तो
अभिप्राय पुरुषार्थ को और कमजोर
करता है,
अभिप्राय में ये नहीं होना चाहिए, विकल्प आ जाए अलग बात है, अभिप्राय तो इसका निषेध करने वाला होना चाहिए।
अगर इस परिणाम का अगर निषेध नहीं आता तो इसका मतलब अभिप्राय हमारा गर्भित है।
अभिप्राय पूर्वक के परिणाम नहीं होने चाहिए। ऐसे परिणाम हो सकते हैं लेकिन अभिप्राय पूर्वक तो नहीं होना चाहिए। अभिप्राय में तो एक समय में पूर्ण हुआ जाता हो तो हमको दूसरा समय नहीं चाहिए।
ऋषि अपन वो इस बात होते हैं कि परिणाम में ऐसा क्यों आएगा? अगर परिणाम में अगर वो आएगा तो वो आज्ञाकारिता की बात को उठाने वाली बात कह रहे हैं। अगर हम आज्ञा को उठाते हैं तो इस तरह के परिणाम भी हमारे को कैसे उठ सकते हैं?
परिणाम में तो क्या है कि कमजोरी होने से उठ सकता है,
पर वो निषेध,
लेकिन उसका निषेध आना चाहिए। अभिप्राय अगर उसका विरुद्ध है तो निषेध आएगा।
अब ऐसी निषेध आएगा तो क्या बार-बार आता ही रहेगा क्या परिणाम?
बार-बार आता हो तो कमजोर होकर के आता है या उतना का उतना जोर से आता है वो देखना है।
इसकी डिग्री कम होती है तो ठीक है,
उसकी डिग्री कम होगी है तो वो जाएगा, और इसकी डिग्री कम नहीं हो रही है तो समझ लेना कि गड़बड़ ज्यादा है, तो उसमें तो थोड़ा ठीक होना मुश्किल है।
कभी भी आज्ञा को उठाने में परिणाम गिर सकते हैं क्या नीचे? कभी भी गुरु आज्ञा को उठाने में परिणाम नीचे गिर सकते हैं क्या?
गिरने का सवाल नहीं है, उठाने में गिरने का सवाल नहीं है, लेकिन वो अपना किसी को इतना हिम्मत नहीं होती है, हिम्मत के कमजोर।
उसका क्या कारण है? इतना हिम्मत जीव को वर्तमान में अनंत पुरुषार्थ का पिंड होकर के भी ये हिम्मत नहीं होती, उसका कारण?
उसी की एक स्वतंत्र योग्यता है, और क्या है कारण में? क्या योग्यता ऐसी है, आगे पीछे ऐसे ही परिणाम चले हैं, आगे पीछे ऐसा ही जीवन जिए हैं, तो ऐसी योग्यता बन जाती है तो कमजोरी भी विशेष अधिक रूप से रह सकती है।
मूल्यांकन आए तो
कमजोरी मिटे? हाँ, मूल्यांकन आने से या सत्संग के बल से उसमें फर्क हो सकता है। सत्संग एक ऐसी चीज है कि अनेक प्रकार की अयोग्यता को मिटाने के लिए सभी प्रकार का मार्गदर्शन सत्संग में पाया जाता है, इसलिए किसी भी स्तर का मुमुक्षु हो सत्संग इसके लिए अमृत है, वरना भाव मरण और द्रव्य मरण उसका सिलसिला बहुत बड़ा है।
अगर सत्संग में हमारी कमजोरी की बात अगर कोई करता है तो उसको हमको किस ढंग से लेना चाहिए?
उसको उपकारी के ढंग से लेना चाहिए। अगर हमारे दोस्त को कोई बताते हैं, लेकिन दोष इसका बताना है जो रिक्वेस्ट करे इसका,
बिना रिक्वेस्ट भी करता है और फिर उछलता भी है बताने से
तो उनको इनकी रिक्वेस्ट को स्मरण करा देना कि भी तुमने तो रिक्वेस्ट किया था इसलिए हमने किया, हाँ उसका स्मरण करा देना, रिमाइंडर देना उसको, हाँ ये क्यों भूल गए, भरना। तो क्या है कि कोई कहे नहीं कहे हम हर एक का दोष ही बताते जाएंगे तो ये हमारा धंधा हो जाएगा नुकसानी का, ये हमारा काम नहीं है। और अनादि की जो दोष दृष्टि है वो पनपेगी, वो पनप जाएगी और मजबूत हो जाएगी, हमको नहीं करना। और हमारे को भी हमारा सुधार करना है तो उतनी फुर्सत कहाँ है? हमारा प्रयोजन भी हमारी सुधार करने का है तो हम दूसरे के दोष में उतने क्यों जाएं? आउट ऑफ ज्यूरिडिक्शन हमको नहीं जाना है। वो तो वो कोई रिक्वेस्ट करे तो हमको भी रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि ठीक है भाई हम बताएंगे कभी, लेकिन तुम भी बताते रहना, हमको भी सुधार करना है। तो ये बात हो गई आपस में लेन देन के, तो बैलेंस इक्वल हो जाएगा, वरना मन में ट्रैफिक हो जाएगा और नुकसानी का काम हो जाएगा।
किसी के भी दोषों को सामने वाला रिक्वेस्ट करे तो भी बताने में कौन कौन से पॉइंट्स का ख्याल रखना चाहिए?
एक तो अभिप्राय वाला ख्याल होना चाहिए कि अभिप्राय पूर्वक उसको होता है या नहीं होता है। खास बात तो परिणाम
तो
में
जो बता रहा है उसके तरफ का तो किसी ने रिक्वेस्ट किया कि मेरे दोषों में मेरे को बताना, तो फिर भी अगर जो सामने वाला व्यक्ति उसको बता रहा है तो उसको कौन कौन से पॉइंट ख्याल में रख करके किसी के भी दोष पे उसका ध्यान खींचना चाहिए, उसमें कौन कौन से मुद्दों को ख्याल में रखना?
दो पॉइंट मुख्य है, एक अगले का अभिप्राय पकड़ो, ये अभिप्राय पूर्वक तो नहीं हो रहा है, क्योंकि परिणाम में अभिप्राय की भूमिका बहुत बड़ी है और अभिप्राय श्रद्धा के साथ संबंध रखता है। जैसा अभिप्राय होता है श्रद्धा वैसी ही होती है प्राय, इसलिए जो श्रद्धा का सबसे बड़ा दोष है वो अभिप्राय से जाना जाता है, पकड़ में आता है। श्रद्धा सूक्ष्म परिणाम है जबकि अभिप्राय स्थूल परिणाम है, तो उसको पकड़ सकते हैं, तो श्रद्धा के दोष से अगला बच सकता है। दूसरा फैक्टर है रस का, कि परिणाम आता है जो भी दोष का उसमें रस कितना आता है, जितना तीव्र रस आता है उतना नुकसान ज्यादा होता है। इसलिए दोष इतना नुकसान का कारण नहीं है जितना दोष का रस नुकसान का कारण है। क्योंकि आत्मा जो चैतन्य रस से भरा हुआ पदार्थ है, दोष है वो जड़ रस से भरा हुआ परिणाम है, दोनों का कॉन्ट्राडिक्शन परस्परस में बिल्कुल एकदम विरुद्ध है। तो जितना तीव्र रस से दोष होता है उतना ही जीव अपने स्वभाव रस से, स्वरूप रस से, आत्मरस से दूर जाता है, ये सबसे बड़ा नुकसान है। तो उस पर ध्यान खींचना चाहिए, देखो रस कितना आया, इतना रस आया वो अच्छा नहीं, भले ही कुछ सेकंडों के लिए आया हो लेकिन रस, कम समय का रस भी उतना मार देता है, उतना मार देता है कि आपको बहुत लंबे काल की जो सत्संग की उपासना किया हो उसको धो डालता है, खा जाता है। इसलिए ये दो बात का ध्यान खींचना, और सत्संगियों में आपस में इस प्रकार का व्यवहार होना ये बहुत जरूरी भी है। इसलिए जरूरी है कि हम हमारे दोस्त को जानते नहीं, और कभी जानते तो बचाव कर लेते हैं, ऐसी परिस्थिति प्रायः हो जाती है। तो सामने वाला जो तटस्थ होगा, दोष को बताने वाले को भी एक बात में जागृत रहना है कि हमको किसी के दोष की बात अगर करनी हो तो भी विदाउट प्रेजुडाइस, कोई पूर्वग्रह के बिना, वर्तमान में बिल्कुल मध्यस्थ और तटस्थ रह करके जो भी लगे वो आत्मकल्याण की पारमार्थिक दृष्टि को मुख्य रख करके उस बात को निवेदन करना है, उनको ऐसा लगा।
ऐसा कि मुमुक्षु दशा में इस तरह का संपना रहना, ये तो ज्ञानी के लिए तो ये बहुत पॉसिबल है, पर मुमुक्षु की भूमिका में ये रहना तो बहुत मुश्किल है। इसलिए मुमुक्षु को तो ये काम उठाने का जरूरत ही क्या है?
नहीं, उसमें परस्पर फायदे का कारण है। ये व्यापार में लाभ क्या है वही तो हम पहले कहा कि इस व्यापार में वो लाभ है, बहुत से लाभ है, एक दो लाभ नहीं है। एक तो आत्मीयता बढ़ेगी तभी ये काम होगा। कब होगा? कि परस्पर में समीपता, आत्मीयता, ऐक्यता बढ़ेगी तब तो ये काम होगा। नंबर दो कि मान कषाय जो सबसे मनुष्य का बड़ा कषाय है, मगर मान नहीं होता तो मोक्ष हथेली में होता है, ये मान के छोड़ने का ये प्रसंग है, तभी दोष की चर्चा होगी। अभिमान वाले दोष की चर्चा नहीं कर सकता। तीसरा कि मुमुक्षु का सबसे बड़ा गुण जो सरलता का है, इस सरलता ये बिना भी दोष की चर्चा नहीं होगी। अपना दोष का निवेदन करो या दूसरा अपना दोष कहे, उनको सुनने की और समझने की और निकालने की वृत्ति, अभिप्राय और क्षमता, ये सब परिणाम बिना सरलता के नहीं हो सकते। तो सरलता का गुण, नम्रता का गुण, आपस में आत्मीयता का, एकता का गुण, ये सब प्रकार के गुण उसमें पैदा होते हैं।
इतना जजमेंट करने के बाद में जो दोस्त बता रहा है, इसको इतना जजमेंट करे सामने वाले का कि वो किस तरह का भूमिका में खड़ा है, क्या है, तो फिर बताए तो वो कार्यकारी हो सकता है। ये तो नॉर्मली क्या होता है कि नॉर्मली हम एक साइड से बताते रहते हैं तो दूसरे को उल्टा भी पड़ जाता है। कारण क्या है कि मुमुक्षु दशा में तो ये भी रहता है कि जैसे हम ज्ञानी को नहीं पहचानते, उससे से मुमुक्षु का योग्यता को भी हम नहीं पहचानते कि कौन मुमुक्षु की भूमिका में खड़ा है। हमको देखने में तो लगता है कि वो दोस्त बता रहे हैं पर उनके खुद के आचरण में ऐसा नहीं है, तो हम तो पहचान नहीं, उस मुमुक्षु को भी पहचान नहीं पाते हैं। उनका क्या है कि आपस में एक कटुता बढ़
जाता है। नहीं, कटुता बढ़े ऐसा कोई काम तो करना नहीं चाहिए, करना नहीं चाहिए। ये काम तो बहुत आत्मीयता वालों का ही होता है, ये उसका फर्स्ट कंडीशन है, सब्जेक्टिव कंडीशन। ये काम
आगे क्या है, तब फिर मार्जिन कहाँ खाता है, सामने वाला कहाँ खड़ा है, हम उसका नाप निकालने चले जाते जब वो मेरे दोषों का निवेदन करता है कि वो खा खड़े रह के बात कर रहा है, उसमें क्या
नहीं, तो
क्या
नहीं, अगर वो बात हमारे अभिप्राय में हो तो दोष बताने का रिक्वेस्ट ही नहीं करना। दोष तो कोई भी बता सकता है क्योंकि स्थूल है, उसमें जरूरी वो नहीं है कि वो योग्यतावान होना चाहिए, ये कोई जरूरी चीज नहीं है, क्योंकि ये तो स्थूल चीज है। आप मेरे पर गुस्सा करोगे तो वो तो मैं कैसा भी निम्न योग्यता वाला हो भी, लेकिन वो तो मुझे पता चले क्या कर उसने मेरे पे गुस्सा कर दिया, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि बताने वाले की योग्यता कोई उच्च कोटि की होवे तभी वो बताएं। ये तो जब रस परस का एक दूसरे का साथ में रहना होता है या मिलना जुलना होता है या कोई प्रसंग पड़ता है या उदय होता है तो एक दूसरे को दोष के परिणाम तो मालूम पड़ ही जाते हैं। अब जब हमको सुधरना है, हमको सुधार करना है, तो अगले का चरित्र का हमको क्या लेना देना है, वो तो हमारा उपकारी है। देखो, हमको तृषा लगी तो पानी पिलाने वाले के घर हम पूछते नहीं कि ये ब्राह्मण का घर है या किस दर्जी का है। हमको तृषा लगी है, पानी कौन पिलाता है, हमको तो पानी पीना है। नंबर नंबर अगर बिना पानी मर जाते हैं तो क्या अगले का घर पूछते हैं क्या कि तुम दर्जी है, ब्राह्मीण है या कोई कृषिकार है, कौन है। तो पानी है तुम्हारे यहाँ, हमको पानी चाहिए, हम मर रहे हैं, बस बात खत्म। ये तो जिंदा रहने की बात है। ठीक है,
मध्यस्थ होकर खाली इतना देखें कि ये जो समाज में अभी है कि नहीं है, मध्यस्थ होकर अभी अपने जो कोई दोष बताता है उसमें खाली इतना चेक करें कि ये जो समाज में है कि नहीं और किस प्रकार वर्क कर रहा है, तो काम पूरा हो जाएगा।
जब कोई हम रिक्वेस्ट करते हैं और कोई दोष बताते हैं तो उस वक्त हमारे उसका दोष देखना है या हमारा देखना है, कौन सा प्रसंग है, वो प्रसंग कौन सा है, हमारे दोस्त देखने का प्रसंग है या दोस्त दिखाने वाले का दोस्त देखने का प्रसंग है, कौन सा प्रसंग है।
ऐसा भी होता है कि सामने वाला ने हमको रिक्वेस्ट नहीं भी किया है पर हमारा उनके साथ अंतरंग का संबंध अच्छा होने के कारण भी कभी उसका कोई परिणाम ऐसा सामने दिखने में आता है कि जिससे उसको बहुत नुकसान हो रहा है, पर उसकी ये चीज समझ में नहीं आ रहा है, तो सहज एक है ना आत्मीयता के कारण भी बोलने में आ जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में अगर बोलने का विकल्प है तो बोलने के विकल्प को संक्षेप लेना चाहिए कि बोल देना चाहिए।
ऐसी परिस्थिति में एक बात को ध्यान में रखना है कि हमारे बोलने से कहीं और तो विपरीत परिणाम तो नहीं आएगा, उसका ख्याल करना, क्योंकि हमको नुकसान से बचाने का अभिप्राय है, अधिक नुकसान में ले जाने का अभिप्राय नहीं है। तो उनकी साइकिक पोजीशन क्या है, इस वक्त मानसिक परिस्थिति क्या है, उनको देख करके बात करना है। और व्यवहार में ऐसा ही होता है, जैसा हमारे यहाँ कोई चिंता की बात होती है घर में, और ऑफिस से पुरुष लोग खाना खाने के टाइम पर खाना खाने को आते हैं, तो चिंता की बात पहले नहीं की जाती है। हम उनकी साइकोलॉजी देखते हैं कि देखो काम का बोझा उठा करके तो घर आए हैं, और दिमाग में यही चलता होगा, वो भी एक बोझा तो है, और वो खाए इसके पहला आराम करे उसके पहला हम दूसरा बोझा डालेंगे, तो उनके और नुकसान हो जाएगा और आकुलता उसकी बढ़ जाएगी और दुखी हो जाएंगे। तुम चाहते नहीं है कोई दुखी हो, पहले कहेंगे एक आप आराम कर लो, अब खाना खा लो, अब ठीक से बैठो, पहले कुछ दूसरी दूसरी बात छेड़ेंगे, देख लेंगे कि अभी क्या मूड में है। हाँ, जब पता चलेगा कि मूड ठीक है तो बात करो, मना ये बात नहीं करना है, मौका देख के बात करेंगे। विवेक करते हैं कि नहीं करते हैं, व्यवहारिक प्रसंग में भी ऐसा विवेक करते हैं कि नहीं करते हैं, ऐसे यहाँ भी अगले की भूमिका, मानसिक भूमिका वर्तमान में क्या है उसको थोड़ा चेक कर लेगा, वरना उसको और नुकसान हो जाएगा। और तो हमारा इरादा उसको नुकसान करने का नहीं है। तो इस तरह से ये मैंने बहुत छोटी मोटी बहुत सी बातें हैं जो सत्संग के दौरान ही समझ में आती है, और सत्संग में इसकी शिक्षा मिलती है, और सत्संग में इसका सुधार होने का छोटा मोटा उपाय मिलता है। ये कृपालु देव ने तो बहुत बड़ा उपाय बताया है कि तुम आज्ञा में एकतान हो जाओ, देखो सब गढ़ को जीत लिया तुमने, वरना ये अभिमन्यु का चक्रावा है सात कोठा, इधर भूला या उधर भूला, इधर भूला नहीं तो उधर भूला, ये संसार चक्र ऐसा ही है। तो पत्र तो दो पंक्ति में लिखा है लेकिन उसमें भरा बहुत है, बहुत भरा है। अगर तुम आज्ञा में एकतान हो गया और उसका फल तुमको मालूम हो गया कि आज्ञा में एकतान होने से मोक्ष मार्ग की प्राप्ति चुटकी बजाने जैसी बात है, तो क्यों नहीं हुए हम, इतना जोर आ गया और हो गया तो इसका काम हो गया, और कमजोर रहा तो फिर स्ट्रगल करना पड़ेगा और उसमें तो पसीना आ जाएगा, ये स्ट्रगल करने में तो बहुत पसीना आता है, और प्राय ऐसा ही बनता है, बहुत फ्रिक्शन होता है अंदर में, भावों का फ्रिक्शन बहुत होता है, बाहर में भी कभी कभी किसी से फ्रिक्शन हो जाता है, ये सब बनता है। और ये सब अंदर बाहर का जो झमेला है ये बहुत थकान लाने वाली बात है, थक जाता है आदमी से।
अभिप्राय
अच्छा है तो थोड़ा तकलीफ कम है।
तो शशि बाबा संकल्प विकल्प रूपी प्रतिबंध में बार बार फंसना नहीं पड़ेगा, इसका बहुत अभिप्राय बहुत स्पष्ट है, तो अपने अभिप्राय को सामने रख रख कर अपना आगे बढ़ता रहेगा काम करता।
अभिप्राय होने में क्या, अभिप्राय का भी बल होता है,
बहुत बल होता है
अभिप्राय भी, एक निर्धार है निर्णय,
मेन जो बल का काम ये अभिप्राय करते हैं,
तो उसका बल भी साथ पैदा हो जाता है।
मेन तो पुरुषार्थ को जो उठाने वाला ये अभिप्राय जो हमारा स्पष्ट रहे ना, तो ये पुरुषार्थ का भी उत्पाद होता है, हमारा अभिप्राय स्पष्ट नहीं रहेगा ना तो हमारा पुरुषार्थ भी नहीं उठेगा, समझे भी
नहीं। तो प्रश्न भी पूछा है कृपालु देव ने किंजी भाई को, कि इसके लिए तुमने कौन सा, तुम क्या उपाय करोगे, ये आज्ञा में एकतान होने के लिए। तुमने जब आज्ञा के लिए रिक्वेस्ट किया कि आप कृपा करके हम कुछ आज्ञा करो हमें, तो आज्ञा में एकतान होने का, हमारा एकतान होने को तैयारी है, क्या उपाय करोगे बताइए।
आपने एक बार ना कमानी जेल भवन में 755 नंबर का पत्र में इसका दृष्टांत दिया था। अगर सदगुरु अगर अमावस्या की रात को भी अगर दिन कहते हैं तो शिष्य को प्रश्न नहीं उठना चाहिए, वो उसको स्वीकार कर लेता कि हाँ गुरु ने कहा है, जिसके पीछे भी कुछ ना कुछ छुपी है, और वो उसको स्वीकार कर लेता।
ऐसा होना चाहिए, रात को दिन कहे, दिन को रात कहे, हमको नहीं देखना है, जो कहते हैं
कुछ ना कुछ हेतु
है, उसके पीछे कुछ हेतु है। और हमने तो ये सब प्रसंग देखे हैं, गुरुदेव का दृष्टांत दिया था, वे सोने का क्या भाव है, क्या बोले एक दिन कुछ लोग थे बैठे थे, गुरुदेव ने पूछा कि सोने का क्या भाव है, तो किसी ने बोला कि 4600 है, कोई 4700 है, कोई 4300 है, कोई ऐसा है कि वैसा है, बोलने लग गए तो हंस गए। ये भाव की बात मैं नहीं पूछ रहा हूँ, क्यों कि हमको तो कोई सोना खरीदना नहीं है, ना हमारे कोई पत्नी है कि कोई अलंकार बलंकार बनाने की बात है, तो परिवार कुटुंब परिवार तो थे नहीं, वो तो त्यागी दशा में थे, तो न सोना खरीदना है न कोई आभूषण बनाने की बात थी। पूछा ऐसा इसी ढंग से कि कोई समझ में नहीं आया किसी को, तो ये सोने का स्वभाव क्या है, हम वो पूछना चाहते हैं। तो क्या है कि जैन दर्शन है वो कर्मवादी भी नहीं, अहिंसावादी भी नहीं, वो स्वभाववादी दर्शन है। जैन दर्शन का वाद कौन सा है, स्यादवाद से क्या बतलाना है कि स्वभाव क्या है वो बतलाना है। तो सोने का स्वभाव तो हर बात में वो स्वभाव को ही मुख्य करते थे, तो सोने का स्वभाव क्या है इस पर से वो बात को आत्मा पर ले जाने चाहते थे। क्योंकि सोने का दृष्टांत आता है शास्त्र में, सोने का, स्फटिक का, अग्नि का, सूर्य का, पानी का, समुद्र का।
सत्पुरुष की आज्ञा तो विशेष बात के लिए होती है, सत्पुरुष की आज्ञा तो विशेष बात के लिए होती है, और इच्छा सामान्य रूप होती है, तो यानी कि इच्छा अनुसार चलना चाहिए।
कोई बात तो वो जो 200 नंबर के वचनावली है ना, उसके सिलसिले में वो बात है।
55 नंबर का पत्र में तो कितना होगा,
200 नंबर में है ना, ज्यां सुधी प्रत्यक्ष ज्ञानी नी इच्छाए एटले आज्ञाए नहीं वर्ताए, पांचवो, त्यां सुधी अज्ञान नी निवृत्ति थवी संभवती नथी। तो इच्छा ने जागना समझ भी एम लिख दी दूसरी तरह,
मतलब अभिप्राय को जानने के लिए, जानने के अभिप्राय को समझ के तदनुसार
नहीं, उसके विकल्प को ही आज्ञा समझ लो। अभिप्राय, आज्ञा, दोनों तो बड़ी 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 बातें हैं, ये विकल्प तो बहुत छोटी बात है, लेकिन विकल्प को ही आज्ञा समझ लो, तो स्वच्छंद होएगा कहाँ से, इनका विकल्प है ना। चलो बात खत्म होना चाहिए।
एम
थाय तो आज्ञामां एक तन थई जाए, क्या संदेह शंका के बीजो विकल्प आवे नहीं। એક તર્ક છે અહીંયા જો બુદ્ધિવાળા લોકોને આવે છે કે ભાઈ જ્ઞાની કા કોઈ એસા વિકલ્પ હો જિસસે એસા લગે કે શાયદ નુકસાન હોયગા તો હમ ક્યા હું ક્યા હું ક્યા કરે ક્યાં નુકસાન હોને દે ક્યા उनको तो एक ही लगेगा कि उसमें भी कोई कुदरत का संकेत होगा, ये नुकसान होने में भी कुदरत का संकेत होगा।
मतलब ऐसे ज्ञानी के कोई भी आज्ञा में या कोई भी वचन में हमारे को पारमार्थिक नुकसान तो हो ही नहीं सकता।
वो तो सवाल ही पैदा नहीं, ये तो व्यवहारिक नुकसान की बात,
व्यवहारिक नुकसान भी वो तो अपन को देना।
जैसे कभी किसी को कोई बड़ी बीमारी आ जाती है, बाद में तंदुरुस्ती और बढ़ जाती है, तो ये बीमारी नुकसान का कारण हुआ या लाभ का कारण हुआ? कचरा साफ हो गया। अगर ये बीमारी के बिना ये पॉइजन निकलने वाला था ही नहीं। जो भी पॉइजनस परिस्थिति होती है वो कभी बीमारी के बारे बाहर निकलती है, तो हमको बीमारी आते ही लगता है, हमारा एक कॉन्सेप्ट ऐसा है कि बीमारी नहीं होना, लेकिन बीमारी होना जरूरी होता है, कभी कभी बीमारी होना भी जरूरी होता है। तो ये सब बात जो है, विकल्प चलेगा ही नहीं। हम तो ये पहले तो ये कहा कि इनको तो कोई विकल्प चलने का सवाल नहीं है, आना एक धर्मो आना है, तब तब वो तो 194 में तो वो तो लिया है, फिर ऋषभदेव भगवान ने भी 98 पुत्र को यही उपदेश दिया था, और परीक्षित राजा को भी सुखदेव ने ऐसा ही उपदेश दिया, और जम्बू स्वामी को सुधर्म स्वामी ने यही उपदेश दिया। कि तीन बात क्यों लिया? कि एक सतयुग के प्रारंभ की बात थी, एक मध्यकाल की बात हुई, और अंत की बात हुई। पहले तीर्थंकर कुंडली ने भी ऐसा कहा, पर अंतिम केवली ने भी ऐसा कहा। दोनों केवली थे, सुधर्मा स्वामी और जम्बू स्वामी दोनों केवली थे, दोनों ने ये उपदेश ग्रहण किया था। मैंने ये आदि मध्य अंत में वही उपदेश है, कहने का मतलब वो एक आदि मध्य अंत में वही उपदेश है। सहज है, वो तो स्वाभाविक है, एक एक मार्ग पर चलने वाले के प्रति प्रेम होता ही है, वो तो सहज होता ही है। वो भी कोई समझाने की जरूरत है क्या?
समझाना पड़ता है, यहाँ पे भी भूल करते हैं।
इतना तो नहीं समझाना पड़ेगा, ऐसा तो होना चाहिए कम से कम, इतना नहीं समझाना। देखो ना, अपन गए उधर गए ने, वड़वा गए, आगास गए, तो क्या लिखा था एंट्रेंस पर? क्या लिखा था? पधारो मुमुक्षु पाहुना, लिखते कि नहीं लिखते? तो कोई जान पहचान वाले ही थोड़े आते हैं, अनजाने लोग आते हैं आश्रम में, तो कृपालु देव के आश्रम में तो बहुत अनजाने लोग आते हैं। कोई भी आओ, जिसको मेरे भगवान के प्रति श्रद्धा है, क्या जो मेरे भगवान जी के लिए आए हैं ना, बस बात खत्म, उनको ही दूसरी दृष्टि से देखेगा, उसका आदर करेगा करेगा, और ज्ञानी तो इससे भी दासानुदास की भक्तिमान की भी भक्ति करने वाले होते हैं, ज्ञानी ऐसे होते हैं। तो फिर मुमुक्षु तो कहने की क्या जरूरत है? उनको ये नहीं लगता कि मैं ज्ञानी हूं तो मैं अपने भक्त की भक्ति कैसे करूं, वो बात नहीं होती है। क्योंकि वो तो शिष्य मानता है कि ये मेरे गुरु है, गुरु थोड़ी ना मानता है कि मैं इसका गुरु हूं। अगर मानता है तो गुरु नहीं है, मैंने गुरु के लायक नहीं है वो, गुरु नहीं है मतलब गुरु के लायक नहीं है।
एक के भाव होता है ना, गुरु शिष्य का भेद,
गुरु शिष्य का भेद व्यवहार की बात है। वहां तो आत्मा ही आत्मा है और कुछ नहीं है, आत्मा से आत्मा का व्यवहार चलता है, वो बात खत्म हो जाती है। ये सुभाग भाई को प्रणाम किया कि नहीं, चरण स्पर्श किया कि नहीं कृपालु देव ने? प्रारंभ में 201 में किया कि नहीं किया? हम तो आपकी चरण रज है ऐसा लिखा है, देखो कैसा भाव आया होगा। ऐसे महाभाग्य ज्ञानियों की और आपकी हमारे पर कृपा वर्तो, हम तो तुम्हारी चरण रज हैं और तीनों काल यही प्रेम आपस में रहे ऐसी निरंजन देव के प्रति याचना है हमारी कि हमारा ऐसा ही प्रेम बना रहे। आप उसके भाव होंगे और आत्मा में क्या क्या असर पहुंचती होगी जो एकांत से भी अधिकतर लाभदायक होगी। आपस के सत्संग से आत्मा में जो आत्मभाव का आविर्भाव होता हुआ होगा वो एकांत से भी बढ़कर होगा, तब तो ये बात करते हैं, सीधा हिसाब तो वही निकलता है इसका। सुभाग भाई का चौथा पत्र है वो 152 नंबर का, यहाँ जो 152 नंबर का पत्र है ना वो सुभाग भाई का चौथा नंबर का पत्र है। पहला पत्र है सुभाग भाई का 132 नंबर का, फिर दूसरा पत्र है 133 नंबर का, तीसरा पत्र है 141 नंबर का, चौथा है 144 नंबर का, ये पांचवा है। नंबर लिखने में और है उसमें लिखते हैं कि आपका कृपा पत्र मिला, साथ ही एक कृपा पत्र मिला, साथ ही एक पद मिला, कोई सुभाग भाई ने एक पद रचना करके भेजा होगा। बहुत मिलने नए नया मिलन हुआ है, भादवे में वो मिले हैं, आसोज का ये पत्र चल रहा है, तो इधर पांचवा नंबर का पत्र है। सर्वार्थ सिद्धि की बात है, सर्व अर्थ का सिद्ध होना सर्वार्थ सिद्धि की ही बात है। जैन में मैंने जैन शास्त्र में देखो, जैन जैसे कोई अलग हो, जैन में ऐसा कहते हैं कि सर्वार्थ सिद्धि महाविमान की ध्वजा, जो सबसे ऊपर का देवलोक का विमान है उसकी ध्वजा से 12 योजन दूर मुक्ति शिला है। कितना दूर है? सिर्फ 12 योजन दूर है, मैंने सर्वार सिद्धि वाले को तो दिखने में आवे ये मुक्ति शिला उधर ही है हमारे सिर पे। कबीर भी धजा से आनंद आनंद पामी गया, वो कबीर का पद होगा शायद, तो धजा थी आनंद आनंद पामी गया, ते पद वाची परमानंद थयो, कबीर नो पद है ते पद वाची ने परमानंद थयो। और जो निमित्त शू बने से ए पद वाची ने परमानंद थयो, प्रभात में वहलो उठ्यो એટલે વહેલી સવારે 4 વાગ્યા આસપાસ પ્રભાતમાં વહેલો ઉઠ્યો, ત્યારથી કોઈ અપૂર્વ આનંદ વર્તા જ કરતો હતો અંદરમાં, એકદમ પુરુષાર્થનો ઉપાડ સ્વરૂપના લક્ષ્ય ધૂન ચાલુ થઈ ગઈ હતી, તેવામાં પદ મળ્યું। એક તો એ ચાલતું હતું એમાં તમારું આ પદનું નિમિત્ત મળ્યું અને મૂળ પદનું અતિશય સ્મરણ થયું, એકદમ મારું જે મૂળ પદ છે એના ઉપર અતિશય જોરથી એટેક આવ્યો, એકતાન થઈ ગયું, અતિશય સ્મરણ થયું સાથે સાથે એકતાન થઈ ગયું। એકાકાર વૃત્તિનું વર્ણન શબ્દે કેમ કરી શકાય, એટલો પુરુષાર્થ તીવ્ર થઈને મને એમ છે અહીંયા આસો સુદ 11 છે એમને સમ્યક દર્શન થયું હોય એવું અનુમાન આ પત્રથી નીકળે છે। 1946 છે પણ આસો સુદ 11 છે એટલે લગભગ ત્યાર પછીના પત્રો છે, એમાં પહેલો પત્ર 1947 24મા વર્ષે શરૂ થાય છે, વચ્ચે તો ડાયરી એમની આવી જાય છે 157 દિવસના 12 વાગ્યા સુધી રહ્યું એ જે એકતાન થઈને એકાકાર બહુ ચાલ્યું, સવારના પ્રોઢથી માંડીને બપોરના 12 વાગ્યા સુધી એ પરિણામ બહુ ચાલ્યું, હજી પણ અપૂર્વ આનંદ તો એવો ને એવો જ છે, એટલે પરિણતિમાં કાંઈ ફેર નથી પડ્યો, ઉપયોગ થોડો બદલાવો, પરિણતિમાં કાંઈ ફેર નથી પડ્યો। એ 152મા પત્રથી એમ લાગે છે કે આસો સુદ 11 હશે તમને સમ્યક દર્શન થયું હોવું જોઈએ, અને એમાં પણ સુભાગભાઈનો પત્ર છે પદ છે એ નિમિત્ત પીડે છે, હા વો 161 મેં આતી હૈ લેકિન ઉસમેં કોઈ ડેટ નહીં ડાલા હૈ, ડેટ નહીં ડાલા હૈ, હા લગતા હૈ કે ક્રમ મેં ભૂલ હુઈ હો સકતી હૈ, યે બહુ તો બહુત ક્લિયર પત્ર હૈ, અપૂર્વ આનંદ એવો ને એવું છે, મૂળ પદનું અતિશય સ્મરણ થયું, એક તાન થઈ ગયું, એ વાત આટલા બધા પત્રમાં પહેલી વહેલી 152માં આવી છે, એટલે એમ લાગે છે કે આ 161વાળા પહેલાંના લખાણ હોવા જોઈએ જેના ઉપર કોઈ તારીખ નથી, 161, 162, 163, 164 એમાં કોઈમાં તારીખ નથી, શું અને વચ્ચે આખી ડાયરી મૂકી દીધી છે, પછી 156માં કોઈ તારીખ નથી, 155માં તારીખ નથી, ખાલી સાલ જ છે, 154માં આસો ખાલી લીધું છે, 153માં આસો સુદ 12 લીધું છે, 11 પછીનો ટૂંકો પોસ્ટકાર્ડ છે। ક્લિયર ઇન્ડિકેશન સર્વ સમર્થ પુરુષો આપને પ્રાપ્ત થયેલા જ્ઞાનને જ ગાઈ રહ્યા છે, વિજ્ઞાનની દિન પ્રતિદિન આત્માને પણ વિશેષતા થતી જાય છે. એમાં ક્લિયર ઇન્ડિકેશન છે, ઓલામાં સહેજ ગોળ ગોળ છે. અને વચ્ચે પાછા ઓલા 161-163 બધા આંક જે નાખ્યા છે એ દસમ પરિશ્રમે નાખ્યા છે. નવું પદ લેવું છે, કોઈ પુરાણું લેવું છે. Yeah.